नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने पर प्रतिबद्धता व्यक्त की। कहा, बिहार में भी शंकर नेत्रालय का केंद्र खोला जाएगा। प्रधानमंत्री ने 912 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले दरभंगा एयरपोर्ट के सिविल इनक्लेव का शिलान्यास किया। महागठबंधन ने विधानसभा उपचुनाव के लिए चारों सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र को रामगढ़ से टिकट। और प्रदेश में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय केंद्रीय दल अब से थोड़ी देर बाद पटना पहुंचेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोगों को बीमारियों से बचाना उनके सरकार की पहली प्राथमिकता है और सरकार इसे स्वास्थ्य नीति का प्रमुख अंग मानकर काम कर रही है। उन्होंने वाराणसी में कई योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के बाद इस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में शंकर नेत्रालय का बड़ा केंद्र खुले, यह उनकी इच्छा है, इसके लिए प्रयास किया जाएगा।
मैं बचपन में इन चीजों से परिचित था और बिहार में इसकी कितनी जरूरत थी मैं उस समय जानता था। तो आज मैं पब्लिकली पूज्य शंकराचार्य जी से प्रार्थना करता हूं कि वैसा ही एक शंकरा नेत्र अस्पताल है बिहार में भी हम करें, क्योंकि मेरी बचपन की वो स्मृतियां मुझे लगता है कि बिहार के लोगों की बहुत बड़ी सेवा होगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति में युवा आए, इसके लिए भी वे प्रयास कर रहे हैं, इससे राजनीति में भ्रष्टाचार और परिवारवाद समाप्त होगा। श्री मोदी ने कहा कि हाल ही में सरकार ने पाली और प्राकृत भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है, इसके दूरगामी परिणाम होंगे।
कुछ समय पहले हमने कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी, उसमें पाली और प्राकृत भाषाएं भी हैं। शास्त्रीय भाषा के रूप में गौरव प्राप्त होना ये हम सबके लिए गौरव का विषय है।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दरभंगा एयरपोर्ट के नए सिविल इनक्लेव का शिलान्यास किया। 912 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस नए सिविल इनक्लेव से यहां पर यात्री सुविधाएं बढ़ जाएंगी। इस अवसर पर दरभंगा एयरपोर्ट पर एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, अति पिछड़ा कल्याण वर्ग के मंत्री हरि सहनी, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर और कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पूर्व मंत्री संजय झा पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए। विधानसभा की चार सीटों तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ के उपचुनाव को लेकर महागठबंधन ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। पटना में महागठबंधन के घटक दलों की बैठक के बाद इसकी जानकारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने दी।
जो महागठबंधन के प्रत्याशी है उनका नाम घोषित करता हूं। इमामगंज से श्री रोशन कुमार मांझी उर्फ राजेश मांझी, बेलागंज से श्री विश्वनाथ कुमार सिंह, रामगढ़ से श्री अजीत कुमार सिंह और तरारी से राजू यादव जी। राजू यादव जी सीपीआई माले के कैंडिडेट हैं। बाकी जो तीन नाम मैं ऊपर पढ़ा वो सब राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं।
बैठक में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और सीपीआई माले के वरिष्ठ नेता कुणाल शामिल हुए। इधर भाजपा के बाद जनता दल यूनाइटेड ने भी बेलागंज से उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। यहां से पूर्व विधान पार्षद मनोरमा देवी चुनाव लड़ेंगी। कल भाजपा ने तरारी और रामगढ़ सीट से अपने प्रत्याशियों की घोषणा की थी। वहीं इमामगंज सीट पर हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा चुनाव लड़ेगा। इस सीट पर आपदा प्रबंधन मंत्री संतोष कुमार सुमन की पत्नी दीपा मांझी चुनाव लड़ेंगी। राज्य के उपचुनाव वाले चारों सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। नामांकन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर तक निर्धारित है। 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। मतदान 13 नवंबर को होगा। उपचुनाव को लेकर आज एनडीए घटक दलों की पटना में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की। बैठक में भाजपा, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ दिलीप जायसवाल ने कहा कि सभी चारों सीटों पर जीत के लिए रणनीति पर चर्चा की गई।
देखिए आज जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय झा जी, श्री सम्राट चौधरी जी और सभी एनडीए के दल के प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित थे। आगे के रणनीति पर चर्चा हुई, जो विधानसभा का उपचुनाव होना है उसमें हमारी क्या रणनीति होगी, कब किनको नॉमिनेशन करना है और नॉमिनेशन के जनसभा में कौन कौन लोग जाएंगे, इन सब चीजों की सूची बनाई गई और आगे हम लोग का कैसे चुनाव प्रचार चलेगा, सभी बातों पर चर्चा हुई।
जदयू के वरिष्ठ नेता और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दावा किया है कि बिहार के चार विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों की जीत होगी। श्री चौधरी ने आज समस्तीपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्य और वर्तमान माहौल से स्पष्ट है कि इन चारों सीटों पर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित है।
चारों सीट पर एनडीए गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनकी जीत सुनिश्चित प्रतीत हो रही है। चार में से दो सीट करारी और रामगढ़ वो भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, जो बेलागंज की सीट है वो जदयू लड़ रही है और इमामगंज की जो सीट है उसमें हम पार्टी लड़ रही है। तो ये चारों सीट पर एनडीए के उम्मीदवार भी लगभग तय हो गए हैं।
प्रदेश में हाल ही में आई बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय केंद्रीय टीम 3 दिवसीय दौरे पर अब से थोड़ी देर बाद पटना पहुंचेगी। 7 सदस्यीय टीम का नेतृत्व गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पार्थ सारथी कर रहे हैं। यह टीम कल और परसों बिहार में रहेगी। इस दौरान टीम के सदस्य प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। 22 अक्टूबर को यह दल राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। बैठक में बाढ़ के कारण हुए नुकसान को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारी अपनी राय रखेंगे। जल संसाधन के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल ने आज सुपौल में कोसी बराज का निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान बराज के अप और डाउन स्ट्रीम में गाद जमा होने को गंभीर मुद्दा बताया। श्री मल्ल ने कहा कि नई नीति बनाकर गाद की सफाई की जाएगी और डिस्चार्ज को और बेहतर किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस साल अगस्त महीने में 18,53,000 अतिरिक्त सदस्य बनाए हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि नई सदस्यता में वृद्धि का श्रेय रोजगार के बढ़ते अवसर, कर्मचारी लाभों के बारे में बढ़ती जागरूकता और संगठन के सफल आउटरीच कार्यक्रमों को दिया जा सकता है। पिछले साल अगस्त की तुलना में इस वर्ष अगस्त माह में संगठन के सदस्यों की संख्या में 9% की वृद्धि हुई है। कटिहार में गंगा और कोसी के कटाव से बेघर हुए करीब 5,500 विस्थापितों को राज्य सरकार के द्वारा अभियान रैन बसेरा के तहत भूमि उपलब्ध कराते हुए पर्चा दिया जा रहा है। जिलाधिकारी मनीष कुमार मीणा ने बताया कि इस अभियान में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जैसा कि आपको पूर्व में बताया गया है कि इस प्रकार का अगर कहीं पे भी शिकायत आता है तो संबंधित पदाधिकारी के ऊपर पूर्व में भी जांच हुआ है, सस्पेंड भी हुआ है, डीपीआई सीडीएस भी सस्पेंड हुई है। तो अगर इस प्रकार का मामला है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगा। टीम गठित करके हम लोग उसका जांच करवाएंगे। भ्रष्टाचार को लेकर कहीं भी शिकायत होता है, चाहे वो किसी भी ऑफिस में हो, सरकार के द्वारा उस पर त्वरित कार्रवाई किया जाता है। तो जो आपका शिकायत है उस पर हम लोग जांच करा कार्रवाई करेंगे।
पटना लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन में कल देर रात अपराधियों ने यात्रियों से लूटपाट की। विरोध करने पर अपराधियों ने 2 राउंड फायरिंग की। दानापुर के सहायक सुरक्षा आयुक्त सैयद नेहाल हसन ने बताया कि एक यात्री घायल हुआ है जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
कि सदस्यपुर स्टेशन में 4-5 लोग कोई आए, आकर उनका बैग छीनने लगे। बैग नहीं छीनने दे रहे थे तो हाथ में गोली चला दिए और फिर जबरदस्ती छीन करके कुछ देर के बाद वहां से और लोग गाड़ी से उतर गए। यही बताया, एसीपी करके उतर गए, ऐसा बता रहा था।
आगामी त्योहारों को देखते हुए उत्तरी और पूर्वी राज्यों की यात्रा करने वाले यात्रियों की भारी भीड़ के मद्देनजर मध्य रेलवे ने मुंबई, पुणे और नागपुर सहित महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों से कुल 570 विशेष रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की है। उत्तर की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए मध्य रेलवे द्वारा दानापुर, गोरखपुर, छपरा, बनारस, समस्तीपुर, आसनसोल, अगरतला, संतरागाछी और अन्य स्थानों के लिए 378 रेलगाड़ियां चलाई गई हैं। यात्री इन गाड़ियों की पूरी समय सारणी www.inquiry.indianrail.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं और एनटीईसी ऐप से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वन और पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार ने आज कैमूर पहाड़ी के टॉप पर स्थित वन विभाग के गेस्ट हाउस में सोलर हाईमास्ट लाइट का उद्घाटन तथा चेनारी प्रखंड में स्थित गुप्ता धाम रास्ता में गाय घाट का शिलान्यास किया। रेहल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि यहां पर्यटन विकास की काफी संभावना है। उन्होंने कहा कि रोहतासगढ़, चौरासन मंदिर और गुप्ता धाम का विकास किया जाएगा। सीतामढ़ी जिले के सोनवर्षा में आज सुबह अज्ञात अपराधियों ने एक गैस एजेंसी के संचालक को गोली मार जख्मी कर दिया। जख्मी गैस एजेंसी संचालक दीप नारायण महतो का सीतामढ़ी के निजी नर्सिंग होम में इलाज चल रहा है। वहीं रोहतास जिले के शिवसागर थाना क्षेत्र के बमहौर गांव में संपत्ति विवाद में कल पूर्व मुखिया की पत्नी को गोली मारने की घटना प्रकाश में आई है। घायल कुंती कुंवर को इलाज के लिए सदर अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद महिला को रेफर कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन के 106वें स्थापना दिवस समारोह का आज शाम समापन हो गया। इस दौरान समारोह में देश के विभिन्न हिस्सों से आए 700 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। समापन समारोह को संबोधित करते हुए सम्मेलन के अध्यक्ष डॉ अनिल सुलभ ने संस्था के गौरवशाली इतिहास के बारे में बताया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ सीपी ठाकुर और पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह भी उपस्थित थे। प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि 25 अक्टूबर से राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। वहीं 23 और 24 अक्टूबर को राज्य के पूर्वी हिस्से के साथ साथ बक्सर, भोजपुर, रोहतास और कैमूर जिले में हल्की बारिश हो सकती है। इंडियन इंजीनियर्स फेडरेशन के पूर्वी क्षेत्र का द्विवार्षिक अधिवेशन आज पटना में आयोजित किया गया। इसमें बिहार के अलावा झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार के अभियंताओं ने भाग लिया। रोहतास जिले के डेहरी थाना क्षेत्र के पाली पुल के पास से पुलिस ने 22 किलो गांजा के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। कैमूर जिले के मोहनिया पुलिस ने स्थानीय बाजार से 60 पीस प्रतिबंधित नशीली दवा और भारी संख्या में इंजेक्शन के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पटना के वीरचंद पटेल पथ पर एक अनियंत्रित तेज रफ्तार कार ने सड़क पर खड़े कई लोगों को कुचल दिया। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद मौके से कार चालक फरार है। बेगूसराय जिले के नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कैथ बहियार गांव से पुलिस ने दो अपराधियों को एक पिस्तौल, तीन जिंदा कारतूस और देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने पर प्रतिबद्धता व्यक्त की। कहा, बिहार में भी शंकर नेत्रालय का केंद्र खोला जाएगा। प्रधानमंत्री ने 912 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले दरभंगा एयरपोर्ट के सिविल इनक्लेव का शिलान्यास किया। महागठबंधन ने विधानसभा उपचुनाव के लिए चारों सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र को रामगढ़ से टिकट। और प्रदेश में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय केंद्रीय दल अब से थोड़ी देर बाद पटना पहुंचेगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ।